लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 5 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली ए सोरेले, बोंजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
इल वांजेलो देला लिटुर्जिया दी ओजी प्रेसेंटा जेसू के ओपेरा ला गुआरिजोने दी उना पर्सोना सोर्डो मुता।
आज की धर्म विधि का सुसमाचार पाठ यीशु को प्रस्तुत करता है जो एक बहरे गूंगे को चंगा करते हैं। इस कहानी में प्रभावित करने वाली बात है कि यीशु किस तरह चमत्कार का कार्य करते हैं। वे बहरे गूंगे को भीड़ से अलग एकांत में लेकर उसके कान में उंगली डालते और उसकी जीभ पर अपनी थूक लगाते हैं। उसके बाद वे आकाश की ओर आंख उठाते और आह भरकर कहते हैं, एफता, अर्थात खुल जा। संत पापा ने कहा कि दूसरी चंगाइयों में लकवा या कोढ़ जैसी गंभीर बीमारियों के लिए यीशु अधिक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस बार क्यों वे इन सभी चीजों को करते हैं जबकि उन्हें सिर्फ रोगी के सिर पर हाथ रखने को कहा गया था? शायद इसलिए कि उस व्यक्ति की स्थिति का एक विशेष प्रतीकात्मक मूल्य है। बहरा और गूंगा होना एक बीमारी है, लेकिन यह एक प्रतीक भी है। यह हम सभी से कुछ कह रहा है कि हम भी बहरे हो सकते हैं। वह व्यक्ति बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह सुन नहीं पा रहा था। यीशु उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी उंगली उसके कान में और उसके बाद मुंह में रखते हैं। गौर करने वाली बात है कि यीशु पहले कान का स्पर्श करते हैं। संत पापा ने कहा, हम सभी के कान हैं, किंतु हम कई बार नहीं सुन पाते हैं, क्यों? उन्होंने कहा,
फ्रातेली सोरेले, चे इन्फाती उना सोर्दिता इंटेरियोरे,
भाइयों एवं बहनों, एक आंतरिक बहरापन है जिसका स्पर्श करने एवं उसे चंगा करने के लिए आज हम यीशु से प्रार्थना करें। यह बहरापन शारीरिक बहरेपन से अधिक खतरनाक है क्योंकि यह हृदय का बहरापन है। हमें जल्द में हजारों चीजें बोलना और करना है जिसके कारण हम रुकने और सुनने के लिए समय नहीं पाते हैं कि कौन हमसे बोल रहा है। इस तरह हम सब कुछ के लिए बहरे बन जाने की जोखिम उठाते हैं और उन लोगों को स्थान नहीं दे पाते हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए। संत पापा ने कहा, मैं उन बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और बहुत सारे लोगों के बारे सोच रहा हूँ जिन्हें बात करने एवं उपदेश की अपेक्षा सुने जाने की जरूरत है। हम अपने आप से सवाल करें, मैं किस तरह सुनता हूँ? क्या मैं लोगों के जीवन से प्रभावित होता हूँ? क्या मैं दूसरों को सुनने के लिए समय दे पाता हूँ? यह हम सभी के लिए है, लेकिन खासकर पुरोहितों के लिए। पुरोहितों को चाहिए कि वे लोगों को सुने, ना हड़बड़ाएं, सुने और देखें कि किस तरह उनकी मदद करनी है। हम सभी को पहले सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। पारिवारिक जीवन पर गौर करें। कई बार हम बिना सुने बात करते हैं। हम जो कह चुके होते हैं उसी को बार बार दोहराते हैं। कई बार विवादों की शुरुआत बात करने से नहीं बल्कि चुप रहने से होती है। आग्रह नहीं करने, दूसरों को आधा सुनने, उनके संघर्षों को नहीं सुनने आदि से होती है जो व्यक्ति को अंदर बंद कर देता है। हृदय की चंगाई सुनने से होती है। सुनना हृदय को स्वस्थ करता है। प्रभु के साथ भी यही बात है। उन्हें हम कई प्रकार के निवेदनों से भर देते हैं, किंतु हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पहले उन्हें सुने। यीशु हमसे इसकी मांग करते हैं। सुसमाचार में जब लोग पूछते हैं कि पहली आज्ञा क्या है, तब प्रभु कहते हैं, इस्राएल सुनो, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। सबसे बढ़कर वे कहते हैं सुनो। संत पापा ने कहा, क्या हम प्रभु को सुनने की कोशिश करते हैं? हम ख्रिस्ते हैं, किंतु शायद हर दिन हजारों शब्दों के बीच सुसमाचार के शब्दों को सुनने के लिए जरा भी समय नहीं निकाल पाते। ये सुशब्द हैं, यदि हम उन्हें सुनने के लिए नहीं रुकेंगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। संत अगस्टीन कहते हैं, मुझे डर है कि प्रभु कहीं पार ना हो जाए। यह उन्हें बिना सुने पार होने देने का डर है, किंतु यदि हम सुसमाचार के लिए समय देंगे तब हम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य का राज पाएंगे। यही वह दवाई है कि हम हर दिन कुछ समय मौन रहें और सुनें, व्यर्थ की बातों को कम करें और ईश्वर की बातों पर अधिक समय दें। संत पापा ने पुनः याद दिलाया, अपने पास हमेशा सुसमाचार की एक प्रति रखें जो आपको मदद देगी। हम अपने आप को पुकारे जाते हुए सुने, जैसा कि हमने बपतिस्मा के दिन यीशु के शब्दों को सुना था। हम यीशु के लिए अपना कान खोलें, यीशु मैं तेरे वचन के लिए अपने आप को खोलना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहता हूँ, मुझे बंद होने से चंगा कीजिए, मुझे घृणा से चंगा कीजिए और मुझे अधीरता से चंगा कीजिए। धन्य कुंवारी मरियम जो शब्दों के लिए खुली थी, जिसने उनमें शरीर धारण किया, हमें हर दिन सुसमाचार में और हमारे भाई बहनों के प्रति खुले होकर धैर्यशील एवं साकुर हृदय से उसके पुत्र को सुनने में सहायता दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने धन्य ममे तो इस क्यू की याद करते हुए कहा,
येरी अकतामार्का इन अर्जेंटीना।
कल अर्जेंटीना के कतामार्का में फ्रायर माइनर और कोर्दोबा के धर्मदर्श की धन्य घोषणा की गई। वे कार्तिक समुदाय एवं समाज की उन्नति के लिए ईश्वर वचन के एक उत्साही संदेश वाहक थे। उनका आदर्श हमें प्रार्थना एवं प्रेरिताय को हमेशा एक साथ लाने एवं शांति तथा भाईचारा की सेवा करने में मदद दे। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्य को सम्मानित किया। उसके बाद संत पापा ने अफगानी शरणार्थियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, इस उत्तेजक घड़ी में जब अफगानी लोग शरण की खोज कर रहे हैं, मैं उनमें से सबसे कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं याचना करता हूँ कि अनेक देश उन सभी लोगों का स्वागत और उनकी रक्षा करेंगे जो नए जीवन की खोज कर रहे हैं। मैं आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, ताकि वे आवश्यक सहायता एवं सुरक्षा प्राप्त कर सकें, युवा अफगानी शिक्षा पा सकें, अपने देश एवं मेजबान देशों में वे अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिष्ठा, शांति एवं भाईचारा के साथ जी सकें। संत पापा फ्रांसिस अगले रविवार को अपनी प्रेरितिक यात्रा पर बुडापेस्ट जा रहे हैं। अपनी यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने कहा,
डोमेनिका प्रोसिमा मी रेकेरो अ बुडापेस्ट।
अगले रविवार मैं बुडापेस्ट जा रहा हूँ, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्ट कांग्रेस का समापन है। मेरी तीर्थयात्रा पौत्र मिस्सा के बाद कुछ दिनों के लिए स्लोवाकिया की ओर बढ़ेगी और अगले बुधवार को देश के संरक्षिका दुखों की कुंवारी के पर्व के साथ समाप्त होगी। इन दिनों को यूरोप के हृदय में आराधना और प्रार्थना के साथ मनाया जाएगा। उन लोगों का अभिवादन करते हुए जिन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया है, मैं आपको तथा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिनसे मैं खुद मुलाकात करना चाहता हूँ। संत पापा ने वहाँ के सुसमाचार के साक्षी गवाहों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की कि वे आज भी साक्ष्य देने के लिए यूरोप की मदद करें। प्रभु जो हमें प्यार करते हैं एवं जिन्होंने हमें बचाया है, उनकी घोषणा हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से, करुणा एवं स्वीकृति के कार्यों से कर सकें। उसके बाद संत पापा ने सभी रोमवासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कलकत्ता के संत तेरेसा के पर्व दिवस की याद करते हुए उनके सम्मान में ताली बजाई तथा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दम बहनों का अभिवादन किया। उन्होंने उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
साथियों मेरी बातों को प्यार से मिलकर रहो, सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को प्यार से मिलकर रहो, ईश्वर को पहचान लो, उसको जान लो, ईश्वर को पहचान लो, उसको जान लो। सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को प्यार से मिल कर रहो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पेत्रुस प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा ने कहा कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो हाल के दिनों में एक भयंकर तूफान से प्रभावित हुए हैं। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें और इस आपदा से पीड़ित लोगों को सहारा दें। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क शहर में 40 से अधिक लोग मारे गए और लुइसियाना में कम से कम 12 लोग मारे गए। पिछले रविवार को तूफान ईडा के कारण भूस्खलन हुआ, वहां बाढ़ आई, पेड़ गिर गए और गंभीर क्षति आई है। साथ ही संत पापा ने उन सभी लोगों को याद किया जो आने वाले दिनों में यहूदी नव वर्ष रोश हाशनाह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दो पर्व योम किप्पूर और सुकोत भी जल्दी ही आ रहा है। उन्होंने कहा, मैं यहूदी धर्म के अपने सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक नया साल शांति के फल से भरपूर हो और जो लोग प्रभु के नियमों पर ईमानदारी से चलते हैं उनकी भलाई हो। रोश हाशना 6 सितंबर की शाम को शुरू होगा और 8 सितंबर 2021 की शाम को समाप्त होगा। योम किप्पूर 15 और 16 सितंबर 2021 के बीच मनाया जाएगा और सुकोत 20 सितंबर को सूर्यास्त से शुरू होगा और 27 सितंबर 2021 को सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाएगा। और संत पापा फ्रांसिस अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस के समापन और स्लोवाकिया की अपनी 3 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए बुद्धापेस्ट की अपनी आगामी यात्रा की तैयारी पर हैं। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के लिए संत पेत्रुस प्रांगण में उपस्थित लोगों से कहा कि वे अगले रविवार को बुद्धापेस्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस का समापन पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान कर सकें। उन्होंने कहा, मिसा के बाद मेरी तीर्थ यात्रा स्लोवाकिया में कुछ दिनों तक जारी रहेगी और अगले बुधवार को उस देश की संरक्षिका दुखों की माता मरियम के लोकप्रिय उत्सव के साथ समाप्त होगी। संत पापा ने कहा, ये दिन यूरोप के केंद्र में आराधना और प्रार्थना द्वारा चिन्हित होंगे। संत पापा ने उन लोगों को बधाई दी और धन्यवाद दिया जिन्होंने 12 से 15 सितंबर तक होने वाली तीर्थ यात्रा की तैयारी की है, साथ ही उन लोगों को भी जो उनका इंतजार कर रहे हैं और जिनसे वे कहते हैं कि वे पूरे दिल से मिलना चाहते हैं। बुदापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस के समापन के साथ ही शुरू होने वाली प्रेरितिक यात्रा के कुछ मुख्य आकर्षण में ग्रीक कैथोलिक शहीदों की स्मृति में एक धर्म विधि समारोह और रोमा समुदाय के नेताओं के साथ एक बैठक शामिल है। संत पापा की 34वीं प्रेरितिक विदेश यात्रा का विषय है मरियम जोसेफ के साथ येसु रास्ते पर। स्लोवाकिया में अपने प्रवास के दौरान, जहां वे राजधानी ब्रातिस्लावा में रहेंगे, वे पोलैंड, यूक्रेन और हंगरी के निकट पूर्वी सीमा पर स्लोवाकिया के दूसरे सबसे बड़े शहर कोशिसे की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन संत पापा फ्रांसिस देश के तीसरे सबसे बड़े शहर त्रनावा क्षेत्र के सैतीन में होंगे, जहां 250 साल पहले माता मरियम को समर्पित राष्ट्रीय तीर्थ में धर्माध्यक्षों के साथ प्रार्थना का एक क्षण आयोजित किया जाएगा, जिसे सात दुखों की माता मरियम के रूप में जाना जाता है। उधर यूरोप के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों की परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल आंजेलो बनियास्को के प्रवचन के साथ बुदापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत रविवार 5 सितंबर को हुई, जिसने पूरी कलीसिया को इस विषय पर चिंतन करने के लिए कहा, मेरे सभी स्रोत आप में हैं। कार्डिनल बनियास्को ने कहा, यूकारिस्ट सभी अकेलेपन, सभी दूरी और सभी उदासीनता से परे है। ईश्वर हमें इन दिनों में महसूस करने में सक्षम होने के लिए अपनी कृपा देते हैं कि यूकारिस्ट में मसीह हमारे साथ हैं। यह कलीसिया लोगों और मानवता को अकेला नहीं छोड़ता। इन शब्दों के साथ हंगरी के धर्माध्यक्ष कार्डिनल पीटर एड्रो ने बुदापेस्ट में 52वीं अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस का उद्घाटन पवित्र मिसा समारोह से शुरू किया, जो पिछले साल महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। बुदापेस्ट के हीरोज स्क्वायर में मनाए जाने वाले पवित्र मिसा में यूरोप के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल आंजेलो बनियास्को द्वारा दिए गए उपदेश को हंगेरियन भाषा में अनुवाद किया गया। इस आदर्श मंच से धर्माध्यक्ष की आवाज यूरोप के लोगों के दिलों में विनम्र और हर्षित दस्तक देना चाहती है और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदुओं तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। एक आवाज जो कमजोर है लेकिन सदियों से गूंजती है और शहीदों के खून से चिन्हित है। अपने बच्चों की सीमाओं और छाया के बावजूद यहाँ से येसु की घोषणा करने और याद रखने की ताकत लाती है। वह आवाज आत्मा की सांस में एक पाल की तरह खुल गई, आज के मानव को एक महान सच्चाई बताती है। आप एक शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आप जीवन के अद्भुत रहस्य के सामने अकेले नहीं हैं। आप स्वतंत्रता और अनंत काल की अपनी प्यास के साथ अकेले नहीं हैं। आप कहीं भी हों, आप अदृश्य नहीं हैं। ईश्वर आपको प्यार से देखते हैं। आप अनाथ नहीं हैं, ईश्वर आपके पिता हैं। आप येसु के लहू, संसार के मुक्तिदाता और अनंत जीवन की रोटी के योग्य हैं। इसलिए आप डरे नहीं। पवित्र संस्कार में उपस्थित येसु सभी अकेलेपन, सभी दूरी और सभी उदासीनता से परे हैं। उधर एल साल्वाडोर की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि देश का राष्ट्रपति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जिसे एल साल्वाडोर के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल द्वारा समर्थित किया गया है, 40 वर्षीय राष्ट्रपति नायब बुकेले के दूसरे कार्यकाल के लिए रास्ता खोल दिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वे चुनाव लड़ेंगे, परंतु अधिकांश का मानना है कि यह संभावना से अधिक है। पहले राष्ट्रपति के लिए 10 साल के लिए फिर से चुनाव की मांग करना प्रतिबंधित था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।